तो अभी हम पहुंचे हैं आठवें अध्याय पर। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था कि आप ये आठवां अध्याय पढ़ के आइए, क्योंकि इसमें केवल एक लिस्ट दिया हुआ है जो अपराध हैं, और इस विषय के ऊपर कोई चर्चा अगर है कोई इस अध्याय के बारे में तो हम चर्चा करेंगे। सेवा नामापराधानाम वर्जनम, 19वां नंबर है ये नियम। और भक्त को चाहिए कि वो इन अपराधों से सदैव बच के रहे, बड़े सावधान रहे कि वो ऐसे अपराध न करे। तो कोई प्रश्न है आपके इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में? आप में से कितने भक्त पढ़ के आए हैं ये अध्याय? बहुत भक्त पढ़ के नहीं आए, तो पूछिए आपके कोई प्रश्न है तो। वैसे नियम तो है कि शुचि के नियम बहुत सख्त होते हैं वैसे देखा जाए तो, कि स्मशान में जाने के बाद तो हम अपवित्र होते ही हैं, या हमारे घर में किसी का देहांत हो गया हो तो उस समय भी घर में पूजा अर्चना नहीं की जाती है। जब तो बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि अब ये सूतक का समय चल रहा है तो हम घर में पूजा वगैरह नहीं कर सकते, तो जब भी करें तो जब तो करना ही है, जब तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। माला के ऊपर भी जब कर सकते हैं, हालांकि प्रयत्न करना चाहिए कि माला वगैरह हम अशुद्ध स्थान में नहीं ले जाएं, जैसे स्मशान भूमि जा रहे हैं या ऐसे कहीं जगह जा रहे हैं तो माला साथ में नहीं ले जाना चाहिए। परंतु ऐसी चीजें जैसे कि हम शव को देख रहे हैं जो कि सड़क पे लेके जा रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर स्नान करना चाहिए पूजा अर्चना करने के पहले। घर में आए तो ठीक है, घर में नियम थोड़े ढीले होते हैं मंदिर के हिसाब से, लेकिन मंदिर में जाना है तो थोड़ा कड़क होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए इसके बारे में। अगर हो सकता है तो ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु जहां तक हो सके हमें प्रयास करना चाहिए इन नियमों का पालन करने के लिए। वैसे तो इस कौन में अभी तक ठीक ठाक इसके सिस्टम सेट नहीं हुए, सूतक का पीरियड कितना होता है, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है सूतक क्या है, ब्राह्मणों के लिए 12 दिन, क्षत्रियों के लिए 15 दिन, एक महीना। अभी वैष्णव के लिए क्या है? वैष्णव तो ब्राह्मण से परे कहलाता है, परंतु 10-12 दिन भी हम अगर पकड़े, एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वैष्णव के लिए नियम नहीं है। अगर ऐसे होता तो रूप गोस्वामी बताते नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में, नहीं हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते, नहीं प्रभुपाद जी इनको कहते। तो थोड़ा कुछ तो पालन करना चाहिए, और अगर हो सके तो दूसरे कहीं जगह से प्रसाद बन के आए तो सबसे अच्छा है। अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो 12 दिन तो भूखे नहीं रह सकते, करना चाहिए। तो ये नियम है, लेकिन अब याद रखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि नियमों के जो उद्गम है या सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं वैदिक भक्ति में, कौन सा श्लोक है, सारे नियमों का सार रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बताया है कि सारे नियम इन दो नियमों के किंकर हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोर एव किंकराः। क्या मतलब इसका, श्लोक का क्या मतलब? ये दो नियम है, एक नियम और दूसरा निषेध। तो कभी हर समय भगवान को स्मरण करना चाहिए, ये विधि है, और कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, ये निषेध है। तो फिर आगे क्या बताया हुआ है? तो अन्य जितने भी अन्य विधि निषेध हैं, वो सारे विधि निषेध इन दो के किंकर हैं, दास हैं। अर्थात इन अन्य सारे नियमों का उद्देश्य है कि इन दो नियमों का हम पालन कर पाए। अगर सारे नियमों का पालन करके कृष्ण का स्मरण न हो और कृष्ण को सदैव हम भूल जाएं, तो क्या लाभ है नियम का पालन करने से? कई बार हम देखते हैं कि नियम के पालन में इतनी कट्टरता होती है कि हम उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, किस लिए हम नियम का पालन कर रहे हैं। इसका रूप गोस्वामी क्या कहते हैं उपदेशामृत में, आपने पढ़ा है ना? ये शब्द नियमाग्रह है, इसके दो अर्थ बताइए। आपने पढ़ा है ना उपदेशामृत, तो पढ़ाइए, बताइए इनके दो अर्थ क्या हैं? कौन सा है? नियम अग्रह, नियम आग्रह, कौन सा क्या है? स्वीकार करना। अग्रह मतलब उपेक्षा करना, नहीं स्वीकार करना। नियम हमें चाहिए ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करना, उनकी परवाह नहीं करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर नियम आग्रह, बहुत ही कट्टरता से उनका पालन करना, इतनी कट्टरता से करना कि हम भूल जाएं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। केवल नियम पालन हो रहा है परंतु उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी एक कहानी बताई थी, एक बार आपको याद होगा, एक ब्राह्मण और वेश्या की, जो आसपास सामने आमने सामने रहा करते थे। तो ब्राह्मण जो है वो अपने घर के बाहर बरामदे में बैठ के अपने वेदों का पाठ किया करता था और अपने नियम में बिल्कुल पक्का था। सुबह उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, अपनी अर्चना करना, वेदों का पाठ करना, स्तोत्र पाठ करना, सब कुछ ठीक ठाक करता था। अपनी शुचि रखना, आचमन पात्र रखना, सब कुछ ठीक ठाक। परंतु उसका मन जो है सदैव सामने के घर में रहता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और सामने वाले घर में जो वेश्या रहती थी, उसके कार्य तो अशुद्ध थे परंतु वो थी भक्त भगवान कृष्ण की, कृष्ण को बहुत मानती थी। तो एक बार यमदूत आए और यमदूत सीधे ब्राह्मण के पास आए, तो ब्राह्मण ने कहा, अरे ये रॉन्ग नंबर हो गया आपका, यहां कैसे आ गए आप, यहां तो नहीं आना चाहिए। देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, इतने मैं अच्छे तरह से सख्त नियमों का पालन करता हूं, मैं वेद पाठ करता हूं, संध्या वंदन करता हूं, सब करता हूं, तपस्वी हूं मैं, तो मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब वहां जाना चाहते थे लेकिन गलती से मेरे पास आ गए। तो फिर यमदूतों ने देखा, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सही जगह पे आए हैं, आपको ही ले जाना है, और लेकर गए। तो फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तव में वो केवल नियम का पालन करने में लगे हुए थे। नियम पालन करने से भगवान की भक्ति होनी चाहिए, ये उनको पता नहीं था। तो ऐसे नियम पालनों का क्या मतलब, क्या फायदा? ऐसे एक श्लोक है, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, नांतर यदि हरि तपसा ततः किम। कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, आराधितो यदि हरि, अगर भगवान की आराधना करता है हरि की, तो उसको तपस्या की क्या जरूरत है? क्योंकि तपस्या का फल ही है भगवान को का भजन करना, और भगवान की सेवा तो कर रहा है, फिर ऐसे अलग से जाके तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं कर रहा है तो उसको तपस्या करने से क्या लाभ मिलेगा? बिना भक्ति के तपस्या का क्या लाभ? तो चाहे कोई तपस्या करे या न करे, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो व्यर्थ है। उसी प्रकार से अंतर बही यदि हरि, अगर अपने अंतःकरण में और बाहर भी वो हरि का दर्शन कर रहा है, तपसा ततः किं, फिर तपस्या करने की उसकी उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार से न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किं, अगर अंदर और बाहर वो भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है तो फिर भी उसकी तपस्या की क्या कीमत है, क्या लाभ है? कुछ नहीं। तो ये ब्राह्मण सब कट्टरता से पालन कर रहा था, फिर भी भक्ति नहीं थी, इसलिए समय आया कि यमदूतों को ले जाना था उसको। तो इस प्रकार से विधि विधानों का पालन करना तो आवश्यक है, परंतु इन दो नियमों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, और इन नियमों का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे भक्ति में हमें आगे बढ़ने में मदद करें, बस यही मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है, जहां तक हो सके इन नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आती हैं जहां पर शायद हमारे लिए संभव न हो ऐसे नियमों का पालन करने के लिए, उस समय भक्ति का प्राधान्य रखते हुए हमें जो उचित है वो करना चाहिए। एक हम उदाहरण देंगे, माताओं को जो महीने में एक बार समय आता है जब वो अशुद्ध हो जाती हैं, तो ऐसे बताया गया है कि उन्होंने भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब जब भोजन पकाया जाता है और फिर उस भोजन को भगवान को अर्पण किया जाता है, तो पकाने का कार्य भी अर्चना का ही भाग माना जाता है। तो फिर जो भी एक महिला भोजन बना रही है, उस समय में वो जो बनाएंगी वो भोग नहीं चढ़ सकता। तो फिर प्रश्न उठेगा कि कौन बनाए घर में, घर में साधारण अवस्था में क्या उपाय हैं सामने, ये समस्या हो जाती है कभी कभी। प्रैक्टिकली अब देखे ऐसे बड़े शहरों में लोग रहते हैं और व्यक्ति है वो दफ्तर में चले जाता है सुबह सुबह, और घर में माताजी रहती है वो बना रही होती हैं, तो क्या करें? अभी ऐसे तो भूखे तो नहीं रह सकते। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि कोई बात नहीं, अगर कोई है जो बना सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बस श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कह के उसको शुद्ध करके बनाओ, भगवान को चढ़ाओ भोग। दो चीजें हैं, अशुद्ध अवस्था में होकर भगवान को भोग चढ़ाएं, या तो भगवान को भोग चढ़ाए बिना खाएं, बताइए कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा ठीक है, बताइए। भगवान को भोग लगाकर खाएं, भले उसमें थोड़ा दोष हो लेकिन फिर भी वही सही। तो हमें इस भावना से लेना चाहिए, इन सारे नियमों का पालन ऐसे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आसानी से बस हम नियमों को त्यागते रहें, चलो भक्ति के नाम पर ये भी नियम त्याग दिया, वो भी नियम त्याग दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके हमें प्रयास करना चाहिए करने के लिए। उसी प्रकार से ये जो शव को हम रास्ते में जाते हुए देख रहे हैं, हो सके प्रैक्टिकल है तो करिए। ये भाव है इन नियमों के पालन करने का, तो इसको हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और कोई प्रश्न? हाँ बताए। हालांकि ये लिखा है यहाँ प्रभुपाद जी ने, और रूप गोस्वामी भी संक्षेप में इसको कहते हैं, और हरिभक्ति विलास में भी संक्षेप में उल्लेख है इसका, फिर भी इतना जोर नहीं दिया गया है इस बात पर, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, इसलिए कोई शुभ काम आरंभ करने के पहले ऐसे गणेश जी की उपासना होती है। एक प्रथा है, एक नियम है। तो गणेश जी की उपासना करनी भी हो इस प्रकार से तो केवल इस कारण से की जानी चाहिए कि कृष्ण भक्ति में जितने भी हमारे विघ्न हैं वो नष्ट हो जाएं, इस उद्देश्य से करनी चाहिए। परंतु इस्कॉन के अंदर कभी श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे एक कोई पद्धति बनाई नहीं, कोई सिस्टम ऐसे बनाया नहीं उन्होंने, न घर में और न मंदिर में। तो एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ था कि उन्होंने कहा कि आपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो हम करें क्या? हम करना चाहते हैं ताकि हमारे जो धनार्जन के कार्य में कोई बाधा नहीं आए, क्योंकि हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं और बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो वो इनको निकाल देंगे, फिर हम करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया कि अगर आप रोज कुछ डॉलर का रकम, उन्होंने कहा कि इतने डॉलर, बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा था, इतने डॉलर रोज मेरे को आप दोगे तो फिर गणेश की पूजा कर सकते हो। तो उन्होंने समझ लिया कि प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे इस बात को करने के लिए। कृष्ण ही काफी है। और वास्तव में कभी कभी भक्त नरसिंह देव से प्रार्थना भी करते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी नरसिंह देव के भक्त हैं, आपको पता है ना ये? गणेश जी नरसिंह देव के, हाँ, इसके लिए प्रमाण क्या है? बोलिए श्लोक, पूरा श्लोक बोलिए। प्रणाम समये विघ्नान विहन्तुम्। क्या मतलब है इसका? ब्रह्म संहिता की प्रार्थना है, आप जानते हैं ना? बताइए।
मैं आदि भगवान श्री गोविंद को नमस्कार करता हूँ कि जिन गणेश जी जिनके चरण कमल अपने मस्तक पर लेकर के विघ्न विनाशक की शक्ति प्रदान कर देते हैं, उसे प्राप्त करते हैं।
शब्दार्थ से बताइए, अभी आपको प्रैक्टिस लगा रहे हैं ना? यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वय, सब बताइए, ऐसे करके बताइए। यत, यत मतलब जिनकी, पाद पल्लव मतलब चरण कमल, विनिधाय धारण किए हुए, पकड़े हुए, कुंभ द्वय, वो कहाँ लगते हैं, कैसे, क्या क्या धारण करते हैं? वो भगवान के चरण कमल। और ऐसे धारण करके क्या उनको लाभ होता है? हाँ बोलिए। विघ्नान विहंतुम अलमस्य त्रयस्य जगत त्रयस्य, तो विघ्नों की नाश करने की शक्ति जो गणेश जी में है वो कहाँ से प्राप्त होती है? उनको नरसिंह देव से प्राप्त होती है। कभी कभी हम लोग जब सुबह को नरसिंह प्रणति गाते हैं मंगल आरती के बाद, तो कई बार भक्त लोग ये भी कहते हैं, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो भक्ति विघ्न विनाशक, विशेष करके भक्ति के लिए जो विघ्न आते हैं उनका नाश करने के लिए नरसिंह देव को हम संबोधित करते हैं। परंतु गणेश जी की शक्ति नरसिंह देव से आती है, तो अलग से गणेश जी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कभी कभी मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति छोड़ी दरवाजे के ऊपर रहती है, ये भी एक प्रथा है, तो ऐसे होने में कोई गलती नहीं है लेकिन कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो नियमों का भाव आप समझ गए ना, किस दृष्टि से इन नियमों को हमें स्वीकारना चाहिए? भक्ति के विकास के लिए, भक्ति के उदय के लिए। हाँ जी,
जब तक गोविंद पूरी तरह पच ना जाए तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
स्पष्ट है ना? अभी नियम दिए हुए हैं, जहां तक संभव है हमें करना चाहिए। हमें इसको समझ लेना चाहिए कि जहां तक हो सके इनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यह शुचि है, स्वच्छता पवित्रता रखने के लिए नियम है। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई बड़े व्यक्ति आए, एक प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, कोई भी बड़े आदमी आए और हमारे सामने बैठे हैं, तो किसी के साथ हम झगड़ेंगे, झगड़ा करेंगे किसी के साथ उनके सामने, या हम किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करेंगे जब वो हमारे सामने है? नहीं। तो जब एक साधारण मनुष्य के सामने, जिसको हम बड़ा आदमी मानते हैं, उसके सामने हम ऐसा नहीं करते, तो भगवान के सामने कैसा करेंगे? तो ये सारे नियम है। ये जो भी हम एक मर्यादित व्यक्ति के सामने जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसे ही करना है। ये समझना है कि जो विग्रह हैं ये केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षी गोपाल की कथा में आती है ना, कि आप कोई प्रतिमा नहीं है, केवल आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। तो जब भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य की प्रत्यक्ष सानिध्य में हम खड़े हैं, तो उस समय हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमारे सामने कोई सम्मानित व्यक्ति हो, हम कैसा करेंगे वैसे। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हाँ, जो
प्रैक्टिकल है जहां तक हो सके, और कम से कम हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, कम से कम भगवान का नाम लेके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान का नाम लेके शुद्ध करना, भगवान का स्मरण करना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। क्या मतलब है इसका? लेकिन पूरा पूरा नहीं बताया आपने। हाँ है सही, पूरा बताइए।
नहीं,
स्मरण करता है, अंदर बाहर ठीक है, लेकिन चाहे वो किसी भी परिस्थिति में से क्यों ना गुजर रहा हो, पवित्र या अपवित्र अवस्था से गुजर रहा हो, सर्व अवस्थाओं में, तो पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण करने से अंदर और बाहर दोनों ही वो शुद्ध हो जाता है। पुंडरीकाक्ष का क्या मतलब है? पुंडरीक मतलब
कमल,
अक्ष आंखें, कमल नयन, कमल लोचन। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो आज अगर आपने पढ़ा नहीं है यह अध्याय, तो जाके पढ़िएगा। विग्रह को हम प्रणाम करते हैं तो स्पष्टीकरण नहीं होता, मतलब दाहिने हाथ, बाया हाथ, बाया हाथ से नहीं, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, हमारा बाया जो साइड है वो भगवान की ओर, या जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनकी ओर होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं मंदिर में, तो हम ऐसे प्रणाम करेंगे कि हमारे हाथ जो हैं, उंगलियां वो गौर निताई की ओर हैं, मंदिर में जब आएंगे है ना, और फिर विग्रह को करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे जाएंगे सामने विग्रह के बाएं। ये एक नियम है, एक विधि है। तो दाहिने ओर वास्तव में देवताओं के लिए बताया जाता है और बाएं ओर भगवान के लिए, तो इसलिए हम लोग ये नियम का पालन करते हैं। बायां तरफ
मंदिर में प्रणाम करते हैं तो चरण की तरफ जाते हैं,
इसलिए हमें या तो थोड़ा इस तरफ होना चाहिए थोड़ा उस तरफ होना चाहिए। वैसे जो पद्धति है ना वैष्णव मंदिरों में, ये भी एक कारण है कि मंदिरों में विग्रह के सामने उस अंत में जैसे गरुड़ जी हैं या हनुमान जी हैं ऐसे होते हैं, तो अगर आप सीधे उनको प्रणाम करेंगे तो उनके आपके पैर चरण उनके ओर होंगे, इसलिए साइड में। लेकिन अभी हमारे मंदिरों में ऐसे व्यवस्था है तो थोड़ा हमें संभाल के करना है बस। कर सकते हैं, परंतु जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो ऐसा, जैसे वो अभी खड़े हैं हमारे सामने तो ऐसा नहीं कि हम उल्टा जाके करेंगे, हम तभी सीधा कर लेंगे। जब हमारे सामने कोई आ रहे हैं उनको दंडवत करना है तो तब सीधा कर लेंगे, उस समय हम जाके बाएं ऐसे नहीं करेंगे। वैसे इस्कॉन पद्धति है, हम वैसे ही करते हैं जैसे विग्रह को कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका विग्रह है। हा? क्योंकि मंदिर में है ही जगह ऐसे। हाँ कर सकते हैं, फिर भी एक सिस्टम बन गया अभी, लेफ्ट साइड से करना बाएं तरफ से करना, क्योंकि विग्रह है इसीलिए।
और देवताओं को फिर दाई साइड।
एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए।
मतलब बताइए। कई लोग करते हैं, कई भक्त ऐसा करते हैं, दंडवत पूरा करते हैं लेकिन एक हाथ कोई चीज पकड़ रहा ऐसे है, एक जपमाल ऐसे को पकड़े हुए हैं या ऐसे करके करते हैं। दोनों स्पर्श होने चाहिए, भले ऐसे माला उठा के कम एक उंगली दो उंगली से उठाएं माला को फिर स्पर्श करें, लेकिन दोनों हाथों से होना चाहिए। माला को थोड़ा उंगली से उठाकर कर, या तो माला को साइड में रख सकते हैं या तो माला को उठाइए थोड़ा सा उंगली से ऐसे कर लीजिए ताकि माला स्पर्श न करे जमीन से। और एक बहुत ऐसे कॉमन चीज है जो भक्त लोग ऐसे बैठते हैं मंदिर में, आपने देखा है विग्रह के सामने ऐसे बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, ये भी वर्जित है ना, लिखा है ना। ऐसे नहीं बैठना चाहिए भगवान के सामने, अर्चा विग्रह के सामने। लेकिन कभी कभी भक्त लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं तो दर्द करता पैर ऐसे, तो ऐसे बैठ जाते हैं। या पैर फैला के भी बैठने नहीं चाहिए। तो ये सब शिष्टाचार है या आचार कैसे होना चाहिए मंदिर के अंदर, ये सब बातें प्रैक्टिकल चीजें यहां पर सब बताई हुई हैं। इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाने चाहिए नहीं लगाना चाहिए, दोनों चीजें बताई हुई हैं। जो मंदिर में है उनके लिए तो है ही, और घर में जहां तक हो सके। घर के विग्रहों की सेवा के लिए जो स्टैंडर्ड है वो तो उतना नहीं हो सकता जितना कि मंदिर में है, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए जितना हो सके उतना घर को पवित्र रखना चाहिए, जो हमारे जितना हम उसको पालन कर सके उतना अच्छा है। लेकिन संभव तो नहीं है कि पूरी तरह से मंदिर की तरह होगा। ठीक है।
गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए।
لیکن ایسا بھی نہیں کہ دس لوگ کھڑے ہیں, دس لوگ اپنا اپنا شروع کر رہے ہیں, وہ کہیں جا رہے ہیں, وہ سمے نہیں, وہ دسوں کی باتیں سننا. یہ ایک بات, ایک بھاو ہونا چاہیے. پریکٹیکلی ایسے کر بھی لیں, جلدی میں کچھ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کیا ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, تو ہمیں تھوڑا پریکٹیکلی اس کو سمجھ لینا چاہیے کیا بھاو ہے اس کے پیچھے. ایسا نہیں کہ ملے اور پیچھے پیچھے بھاگ کر زبردستی کچھ بولے, نہیں, ہمیں شاستر میں بتایا ہے کوئی پرشنسا کرنی ہے آپ کی, ایسے نہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کی پرشنسا ہم کرنا کیوں نہیں پسند کرتے بتائیے, کیا بھاو ہے دنیا میں دوسروں کی پرشنسا کرنے کے لیے, ہردے میں کیوں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, بولیے کیا کارن ہے؟ ایرشا. ان کی پرشنسا کیوں ہونی چاہیے, میری کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ بھاو ہے نا دنیا میں. اس لیے چیتنیہ مہاپربھو نے جب کہا ہے مانی امانی نہ مان دینا, امانی نہ مطلب کیا ہے آپ کو وہ شلوک معلوم ہے نا, کون سا شلوک ہے؟ ترناد اپی سنی چین ترور اپی سہشنونا امانین مان دین کیرتنی سدا ہری ہی. تو اگر آپ کو سدیو ہری کیرتن کرنا ہے تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے, ترن سے بھی زیادہ نمر ہونا چاہیے, ورکش سے بھی ادھک سہنشیل ہونا چاہیے, امانین مان کی اپیکشا نہیں کرنی چاہیے, اور مان دینا دوسروں کو مان دینے کے لیے سدیو تیار ہونا چاہیے. تو پہلے انہوں نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کہ اپنے لیے مان کی اپیکشا نہیں کرنی چاہیے, اور وہ تب ہوگا جب ہم مان دینا ہوں گے, جب دوسروں کو مان دے پائیں گے تب اپنے لیے ہم اپیکشا نہیں کریں گے. دونوں چیزیں آوشک ہیں. وہی ویکتی دوسرے کی پرشنسا کر سکتا ہے ہردے سے, ایسا نہیں کہ بس جیسے راجنیتی میں ہوتا ہے ویسے نہیں, ہردے سے کسی کو کسی کی پرشنسا کرنی ہے تو ایرشا سے مکت ہونا چاہیے, تبھی واستوک پرشنسا ہو سکتی ہے. تو گرو سے ایرشا تو نہیں کرنی چاہیے, ہے نا, بھلے کسی سے کریں, کرنا نہیں چاہیے, لیکن انیوں سے بھلے کرے, لیکن ویشنووں سے, وشیش کر کے سدگروں اور گرو جنوں سے تو نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. اس لیے ایسی بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے ہردے میں ایک آدر کی بھاونا بنی رہے, یہ بات ہے. بالکل بالکل, کیونکہ لوگ کرشن بھکت کیوں نہیں بنتے, ایرشا کی بھاونا سے. پربھوپاد جی ایسے کئی بار کہتے ہیں, کیونکہ مول روپ سے ایرشا بھگوان سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھوکتا ہونا چاہتے ہیں. کرشن ہی کیوں اکیلے بھوکتا, ہم بھی تو بھوکتا ہیں, ہم تھوڑی کم ہیں کیا, ہمیں بھی کرنا ہے بھوگ, تو پھر ایرشا کرتے ہیں بھگوان سے. تو کوئی ویکتی کہے گا, ارے میں کہاں ایرشا کرتا ہوں بھگوان سے, میں تو ایرشا نہیں کرتا. ہاں, اس کے من میں ایسے کوئی دویش بھاونا بھلے نہ ہو, پرنتو پرمان کیا ہے کہ وہ ایرشا کر رہا ہے, بھوگ کی اچھا اس کے من میں ہے ابھی تک, یہ پرمان ہے. بھوکتا ایک ماتر کرشن ہے, تو کرشن کے علاوہ ہم بھی بھوکتا ہونا چاہیں کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھیں. ابھی ہم جائیں گے نویں ادھیائے میں, تو یہ ادھیائے آٹھواں ادھیائے اوشی پڑھیے گا آپ سب, ورجنیہ اپرادھ. اور اس ادھیائے میں دس نام اپرادھ بھی ہیں. تو نام اپرادھ آپ جانتے ہیں, ان اپرادھوں سے بچ کر رہنا چاہیے بھکت کو. یہاں مہتوپورن بات کی گئی ہے کہ اگر کسی کو پاپوں سے مکت ہونا ہے تو اسے بھگوان کے شرن میں جانا چاہیے. بھگوان کے شرن میں جانے سے ہم پاپ مکت ہو سکتے ہیں, ارتھات سارے دنیا کے اپرادھوں سے بچنے کے لیے بھگوان کا آشرے لینا چاہیے. भगवान के प्रति अपराध करेंगे अर्थात अर्चा विग्रह की कोई के प्रति अपराध करेंगे तो हरिनाम लेकर उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हरिनाम का अपराध करेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर। इसी बात को यहां इस अध्याय में बताया हुआ है। पद्म पुराण में ऐसा कहा हुआ है। तो आइए अभी नौवां अध्याय शुरू करते हैं, भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। 19 नियम हो चुके, अब 20वां नियम है। 20वां नियम अब देख रहे हैं ना, ये निवृत्ति चल रही है अभी, निषेध। पहले 20 अंग भक्ति के प्रवेश द्वार हैं, तो अभी हम भक्ति के द्वार में प्रवेश कर चुके, अंदर चले गए अभी प्राय। 20वां अंग अभी चल रहा है, पहले 10 प्रवृत्ति और बाद वाले 10 निवृत्ति। तो 20वां निंदा। रूप गोस्वामी कहते हैं, तन निंदादि असहिष्णुता, तन निंदादि असहिष्णुता, ये संक्षेप में है। परंतु इसका पूर्ण रूप ऐसा है, कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। इसका क्या मतलब है कोई बताएंगे? हाँ,
कृष्ण उनके भक्तों से जो द्वेष करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी इस दृष्टा को सहन कभी नहीं करना चाहिए।
बहुत अच्छा। असहिष्णुता मतलब सहन नहीं करना चाहिए। जो द्वेष करता है और निंदा करता है, किनकी? कृष्ण तद भक्त, कृष्ण और उनके भक्त दोनों की निंदा करने वाले और द्वेष करने वाले व्यक्ति से हमें संग नहीं करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। तो कोई पढ़ेंगे?
भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं।
तो दूसरों की निंदा सुनना एक द्वेष भावना से, ये अच्छी बात नहीं है। तो दूसरों के बारे में अगर हमें कोई ऐसी बात बोलनी है जो उसकी प्रशंसा नहीं है, तो ये आवश्यक है कि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना हो, हम उस व्यक्ति के हितैषी हो, तब भी अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो निंदा नहीं माना जाता, हम उसके भलाई के लिए कुछ कर रहे हो। जैसे अगर गुरु हैं, अपने शिष्य को डांटेंगे और उसके भूल को निकालेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु इस वैष्णव अपराध कर बैठते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु के मन में जो है शिष्य के प्रति सद्भावना है, वो तो हितैषी हैं शिष्य के, वो चाहते हैं कि शिष्य का भला हो। अगर ऐसे गलती शिष्य करता रहेगा तो उसकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो भूल निकालता है। ऐसे प्रतीत होता है बाहरी दृष्टि से कि वो निंदा कर रहे हैं, परंतु ये निंदा नहीं कहलाता, नहीं वो शिष्य से द्वेष करते हैं, इसलिए द्वेष महत्वपूर्ण है। जो निंदा द्वेष भावना से की जाती है वो ठीक नहीं है। अगर किसी के सुधार के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी के हित के लिए अगर कुछ कहा जा रहा है बिना कोई द्वेष भावना के, तो फिर उसको निंदा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि भक्त का हृदय स्वच्छ होना चाहिए, उद्देश्य स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन जहां पर ऐसे द्वेषपूर्ण निंदात्मक वचन जो है वो बोले जाते हैं भक्तों के प्रति या कृष्ण के प्रति, तो उस स्थान से हमें चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी चैतन्य शिक्षाष्टकम के बारे में बतला रहे हैं। अभी अभी जो श्लोक आपने कहा कौन सा है वो, त्रिनाजपि सुनिचेन श्लोक। ये निंदा करने की भावना जो है ये बहुत ऐसे जड़ लगा ली है इस आदत ने सब बद्ध जीव के हृदय में कि उसको काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मत्सर या द्वेष पे आधारित है। इसलिए जो भगवत भक्त होना चाहता है, जो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसको ये द्वेष भावना त्यागनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक कौन सा है, दूसरा ही श्लोक बोलिए, पहले दो लाइन बोलिए या पहले एक लाइन भी। धर्म प्रोज्झित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रउज्झित, प्रकृष्ट रूपेण उज्झित कैटव, कैटव मतलब जो धोखेबाजी, जो ये श्रीमद् भागवत में धोखेबाजी के जितने भी धर्म हैं उज्झित, उनको बहिष्कृत किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। धर्म प्रोज्झित कैटवो अत्र परम, ये यहां एक परधर्म, परम धर्म की व्याख्या की हुई है इस भागवत में। निर्मत्सराणाम सताम, ये भागवत सताम उन साधुओं के लिए है, भक्तों के लिए है जो कि निर्मत्सर हैं। उपदेश अमृत में भी रूप गोस्वामी कहते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ भक्त के लक्षण क्या होते हैं, निंदादि शून्यम है ना, तो निंदा करने की प्रवृत्ति से मुक्त होने चाहिए। ये बहुत कठिन बात है लेकिन फिर भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और यहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अपने आप के लिए तो हमें नम्र बनना चाहिए, हमारी अगर निंदा करे तो हमें सहन करना चाहिए, परंतु जब कोई अन्य दूसरे भक्त की निंदा करे या भगवान की निंदा करे तो हमें नहीं सहन करना चाहिए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया, जबकि जगाई और मधाई, विशेष करके मधाई ने आक्रमण किया था नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत क्रोधित होकर वहां पर पहुंचे और दोनों का वध करना चाहते थे, परंतु नित्यानंद प्रभु ने उनके चरणों में प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, कि आप हृदय में बैठे लोगों के राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं, उनके अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसका नाश करने के लिए आए हैं, लोग असुरों का शरीर नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा करते तो कलयुग में सारे लोग ऐसे ही हैं, कितने लोगों की हत्या आप करेंगे, इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए ताकि ये जो दुष्ट प्रवृत्ति इनके अंदर है वो खत्म हो जाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पढ़िए दूसरे पैराग्राफ में, जब चैतन्य महाप्रभु के इस यह दिखलाता है, चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां से पढ़िएगा।
यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्म सम्मान के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा।
तो कौन सी लीला की याद आ रही है आपको, कल ही सुनाया था, कल या परसों, जीव गोस्वामी और एक कौन थे पहले वाले, दिग्विजय पंडित, और दूसरे वल्लभाचार्य, परंतु ज्यादा है वास्तव में दिग्विजय पंडित के संदर्भ में। तो जीव गोस्वामी ने जो किया वो सही किया, क्योंकि उन्होंने आत्मसम्मान के लिए नहीं किया, उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का अपमान हुआ था इसको वो सहन नहीं कर सके, तो उनका व्यवहार जो है बिल्कुल सही था, इस सिद्धांत के अनुसार तद भक्त विद्वेष विंदादि असहिष्णुता, सहन नहीं किया उन्होंने। और फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे अपमानों से निपटने के तीन तरीके हैं। अगर कोई आपके सामने कृष्ण या उस भक्त की, किसी भक्त की निंदा करना शुरू करे तो आप क्या कर सकते हैं? तीन चीजों में से कोई एक कर सकते हैं, तो पढ़िए कौन सी तीन चीजें हैं।
ऐसे अपमानों से निपटने के तीन तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे।
पहली बात तो पहला क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो उसको तर्क द्वारा गलत साबित करना चाहिए, उसको काट देना चाहिए उसके शब्दों को अर्थात। तो ये पहला मार्ग है हमारे सामने, अगर ये नहीं हो सके। हाँ ये निंदा सही नहीं है और आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए और जो भी है वो उचित नहीं है, तो सही ढंग से उसका प्रतिकार करना चाहिए। आगे
यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे अपितु अपना जीवन त्याग दे।
तो पहला नहीं कर सके हैं, तो दूसरा करना चाहिए। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि दूसरा मार्ग जो है थोड़ा सा कठिन है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ना, है क्या? नहीं तो बार बार हमें प्राण त्यागना पड़ेगा। आजकल जो कलयुग की परिस्थिति है, न जाने कितनी बार प्राण त्याग चुके होते हैं हम आज तक। नहीं तो ठीक है, दूसरा नहीं हो पाए तो फिर क्या करना चाहिए, पढ़े।
यदि वह ये दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। यदि वह उपर्युक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है।
तो पहला न हो सके तो पहले और तीसरे में से ही हमें कदम उठाने चाहिए है? तो दूसरा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, पहला या तो तीसरा, ठीक है। तो फिर वहां से चले जाना चाहिए, उस व्यक्ति का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए फिर। ये एक जोर देने के लिए बताया गया है, इस बात को जोर देने के लिए। कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है कि बोलने वाले आदमी का जिह्वा काट देना चाहिए, ऐसे सब बताए जाते हैं अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन आजकल करने जाएंगे तो परेशानी काफी होगी ऐसा करने से। इसलिए यही है बेहतर, पहला और तीसरा, लेकिन इस बात को जोर देने के लिए कि कितनी बुरी चीज है ये, इसलिए ऐसे सब उदाहरण दिए हुए हैं, ऐसे नियम बताए गए हैं। तो अभी 21वां और 22वां नियम, तिलक और तुलसी कंठी, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं धृतिर वैष्णव चिन्हानाम। धृति मतलब धारण करना, वैष्णव चिन्हानाम और साथ साथ नामाक्षर धृति ही। वैष्णव चिन्ह होते हैं जैसे तिलक और कंठी माला, और नामाक्षर धृति ही मतलब शरीर के ऊपर चंदन से हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के पवित्र नामों को कमुद्रण करना, ठीक है। हाँ तो पद्म पुराण में क्या बताया गया है इसके बारे में, तिलक और तुलसी के बारे में क्या बताया हुआ है?
जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंडी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म जो चार प्रतीक विष्णु अपने चार हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं।
तो देखिए शास्त्रों में ऐसे महिमा बतलाई गई है, तिलक धारण करने के लिए और कंठी माला भी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए कई बार लोग थोड़े फैशन के लिए कंठी माला पहन लेते हैं। वैसे कॉलेज में वगैरह में देखा, एक बार गए तो कई विद्यार्थी कंठी माला खरीदने चले खड़े हो गए, बोले आप क्यों पहनना चाहते हो, हाथ में कोई दूसरा वस्तु है और यहाँ कंठी माला भी है, वो ठीक नहीं, हाँ तो ये क्यों करना चाहते हो। उनको लगता है ये एक फैशन है, थोड़ा फैशन की तरह। कॉलेजों में आप तो जानते हैं ना, फैशन अलग अलग लगाते हैं, आज एक फैशन है कल दूसरा फैशन है कोई, तो ये तो ठीक नहीं है। तो एक बार हमने कंठी पहन ली, उसके बाद नियमों के बारे में थोड़ा सख्त होना चाहिए। और ऐसा बताया जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो इस जगह को वैकुंठ बना लेते हैं, जहां भी वो खड़े होते हैं वो जगह वैकुंठ है। अच्छा, आगे नामाक्षर के बारे में बताया हुआ है।
इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर में तिलक या गोपी चंदन वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गला तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, और उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के
तो ये वास्तव में है, ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि कई ऐसे स्थान है जहां बाहर आप तिलक पहन के नहीं जा सकते, जैसे अरब देशों में या पूर्व पहले साम्यवादी देशों में, जैसे रूस आदि देशों में हमारे भक्त हुआ करते थे और छुप छुप कर भक्ति करते थे, और अगर सरकार को वहां पता चलता कि ये लोग भक्ति कर रहे हैं तो शायद उनको मृत्युदंड भी दे दें, या ऐसे कई प्रकार के दंड देते थे उनको। तो उस समय क्या किया जाए, तो कम से कम पानी का तिलक तो पहन लेना चाहिए ऐसे कोई अवस्था में, ऐसे बताया जाता है कि कम से कम उतना तो सही है। अगर गोपी चंदन पहन के नहीं जा सके तो पानी का तो तिलक लगा के जा सकते हैं कम से कम, लेकिन हमारे लिए ऐसे कोई खतरा नहीं है, तो हमें तो धारण करना चाहिए, अच्छी तरह से पहनना चाहिए। और ऐसे लोगों के पास, भक्तों के पास यमदूत कभी आते नहीं है। एक भक्त थे, हैं बल्कि, उनको हृदय का दौरा हो गया, उनको ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, और ये कई सालों से भक्त हैं, दीक्षित हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, गृहस्थ हैं, बुजुर्ग भी हैं, 65 साल की उम्र होगी उनकी। तो उनको एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, और उस कमरे में दो थे, एक उनके बगल में बैठ वो लेटे हुए थे और उनके पलंग में वही सुखद थे, और दोनों के बीच में एक छोटा सा पर्दा था, और उन्होंने कहा, उनका साक्षात्कार उन्होंने सुनाया, ताकि पहली बार मेरे जीवन में मैं जब बैठा था मैंने देखा कि यमदूत आए लेकिन आए कहां, सीधे आए दीवार के भीतर से आए, उनको तो दरवाजे की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे नहीं कि वो खटखटाएं दरवाजा खोलें फिर यमदूत आएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो कोई दरवाजा खुलता ही नहीं, अंदर बैठ जाता, ऐसा नहीं होगा। तो यमदूतों के लिए कोई दरवाजे की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो दीवारों के बीच में से भी जा सकते हैं, उनके शरीर तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं शरीर, तो चले आए। तो इन्होंने देखा अचानक इनको, और ये दो यमदूत सीधे उनको पार करके गए ऐसे सामने से, और पार करके गए और वहां गए। تو یہ بھکت تھوڑے ہل گئے اس سمے, انہوں نے دیکھا ان کے پاس تو نہیں آئے, لیکن یہ بعد میں ان کو پتا چل کہ میرے پاس نہیں آئے ہیں. کیسے آتے, کیونکہ یہاں تو بھکت ہیں, یہ تلک دھارن کیا ہوا تھا, کب جپ کر رہے ہیں, پرساد لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے بعد میں ان کو پتا چل, پھر اچانک ڈاکٹر واکٹر آنے لگے, وہ نرس آئی, سسٹر آئی, کچھ انہیں دیکھا اور ڈاکٹر کو بلایا, وہ پیشنٹ کو باہر لے جایا گیا اور دیکھا کہ وہ پیشنٹ کی مرتیو ہو گئی ہے. ایسے وہ دو تین ادھارن بتا رہے تھے, اور انی بھکتوں کے بھی ایسے کئی ادھارن ہیں, انہوں نے ساکشات دیکھا. وہ دو بار میرے مجھے ایسا ہوا, اور کہیں بھی جب وہ جا رہے تو انہوں نے پیسج میں سے جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا یمدوتوں کو, اور آگے سامنے والے روم میں کسی پیشنٹ کا دیہانت ہو گیا. تو ان کے پاس نہیں, کمرے میں آئے لیکن بھکت کے پاس نہیں آئے, وہاں چلے گئے. ایک اسکون کے ایک بھکت تھے, ہیں جو چتر بناتے تھے پربھوپاد کے لیے, ان کتابوں میں سے. آپ تو جانتے ہیں کہ پربھوپاد کے سمکش کئی ایسے شش آئے جو چترکار تھے, اچھے اچھے چتر بناتے تھے, جن کو ان کتابوں میں رکھا گیا. تو ایسے بھکت تھے پریکشت داس, تو ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا, کسی ایک دوسرے بھکت نے کہا تھا, کبھی ہم نے پریکشت پربھو سے سنا نہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی دوسرے بھکت بتا رہے تھے کہ ان کا جو ان کے جو پتا جی تھے وہ بھکتی کے ورودھ تھے, اور وہ ناستک تھے, کسی چیز میں مانتے نہیں تھے کہ یہ لڑکا میرا پاگل ہو گیا ہے, یہ کیا سب کر رہا ہے, بھگوان یہ ہر ایک سر منڈوا کے جا رہا ہے, یہ شیکھا پہن رہا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ خوش نہیں تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی, ویسے بھی تھوڑے وردھ تھے وہ, تو پریکشت جو ہے پربھو وہ ان کے پتا جی کو ملنے کے لیے گئے تھے. تو پتا جی کو بیماری ہوئی تھی اور وہ کہنے لگے, بڑے گھبرائے ہوئے تھے, اور پریکشت پربھو کی ماتا نے کہا کہ میں نے میرے پتی کو ایسے کبھی گھبرائے ہوئے دیکھا نہیں, یہ تو اتنے ساہسی ویکتی ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں بلکہ دوسرے ڈرتے ہیں ان سے, لیکن آج یہ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے تھوڑے دنوں سے بہت ڈرے ہوئے ہیں. تو پریکشت پربھو جب گئے ان کے پاس, پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا کیسے چل رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو تمہارے کتابوں میں جو چتر کیا تھا نا, وہ ویکتی آ رہے ہیں, کوئی ایسے کھڑے ہیں, ایسے دانت ان کے بڑے بڑے ہیں, کس کی کتھا ہے, اجامل کی کتھا میں جو یمدوت یمدوتوں کا چتر بنایا ہوا تھا نا, پریکشت پربھو نے شاید بنا ہوا ہوگا وہ چتر. تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو بنایا ہوا تھا وہ چتر, تو ویسے ہی لوگ آئے میرے پاس, وہ میرے کو چھیننے کے لیے آئے, اور میں نے میرے پستول دے دی, میں نے پستول لی. تو اس کی ماں کہہ رہی تھی, بار بار بول رہے تھے میرا بندوق لانا بندوق لانا. تو ماں پوچھ رہی تھی, یعنی ان کی پتنی ان کو پوچھ رہی, بندوق کس لیے, کیا کرو گے بندوق سے, نہیں وہ آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں, ان کو تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو یہ سجن تو دیکھ رہے تھے یمدوتوں کو, وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے, اوپر پرتیکشا کر رہے تھے, شاید ابھی تک تھوڑا ٹائم کے جلدی آگے پہنچ گئے ہوں گے یمدوت, تو کسی وجہ سے وہ جلدی آ گئے ہوں گے. تو درشن تو ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی, جو پاپی لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو درشن ہو جاتے ہیں یمدوتوں کے, اس پرکار سے بہت گھبرا جاتے ہیں پھر, لیکن جو بھکت ہوتے ہیں ان کو ایسے ڈر نہیں ہوتا. ایک شلوک یاد آ رہا ہے, بھگوت گیتا کنچت دھیتا گنگا جل لو کنیکا پیتا. پھر ہے, بہت سال پہلے میں نے پڑھا تھا, سکرت اپی یہ مراری سمرچا تریتے تسے یمین نہ چرچا. سمجھے آپ, بھگوت گیتا کنچت دھیتا, مطلب بھگوت گیتا اگر آپ نے کنچت تھوڑا بھی اگر پڑھ لیا ہو بھکتی بھاو سے, گنگا جل لو کنیکا پیتا, گنگا جل تھوڑا بھی آپ نے لیا ہو, اتنا سا بس اپنے گرہن کر لیا ہو, سکرت اپی ایو مراری سمرچا, مراری یا شری کرشن کی ارچنا آپ نے یا ان کی سیوا آپ نے سکرت اپی ایک بار کہیں غلطی سے بھی اگر کر لیا بھی ہے, اگر آپ نے کیا ہوا ہے, تو تریتے تسیا ان تینوں چیزوں کرنے سے یمینا نہ چرچا, मतलब मृत्यु के समय कोई वाद विवाद होगा नहीं यमदूतों से, जैसे अजामिल का हुआ है ना, अरे मेरे पास क्यों आए, उसके मने मैं अभी तैयार नहीं हूं, नहीं आना मेरे पास, मुझे और 2 साल रहने हैं, मुझे प्राण त्याग नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका समय हो गया, आपको आना चाहिए, नहीं नहीं आऊंगा, नहीं आना ही होगा, ये सब आवश्यक नहीं है भक्त के लिए, ये सब नहीं होगा। भक्त के लिए कौन आएंगे? विष्णु दूत आएंगे। और कैसे आएंगे? और अच्छा सम्मान वगैरह सब बड़े ठाक से जाएंगे। कहां जाएंगे? वैकुंठ लोक, भगवान के धाम में। इसलिए भक्तों को कभी विष्णु यमदूतों का डर नहीं रहता है।
वैकुंठ से तो विष्णु आते, तो कृष्ण लोक से क्या कृष्ण
दूत आएंगे? अभी हमें पता नहीं, हमें अनुभव नहीं है, जब होगा तब हम बताएंगे आपको। अब इसके लिए कौन आते हैं हमें तो साक्षात्कार नहीं है, जब समय आएगा तब बताएंगे। इसलिए हम तो कह नहीं सकते कि गोलोक वृंदावन जाने के लिए कौन आता है, कृष्ण के ही कोई दूत आते होंगे। हाँ, ये भी चिन्ह कई बार लगाते हैं आपने, खास करके जो श्री वैष्णव है वगैरह, आप देखेंगे शंख चक्र गद के चिन्ह होते हैं, वो शरीर पे भी लगाते हैं, शुभ चिन्ह माने जाते हैं। ये फैशन की दृष्टि से फिर भी उसका लाभ तो होगा, तो टैटू वगैरह बनाते हैं कई बार, ऐसे भक्तों ने बनाया हुआ हरे कृष्ण ऐसे टैटू लगा हुआ, तो वो भी ऐसा ही है अवश्य, वो भी ठीक है, उसका भी लाभ तो होगा अवश्य। फिर वो लगाते थे, हाँ, उसको मुद्रण कहते हैं। तो दीक्षा के पंच संस्कार विधि होती है, खैर वो अलग विषय है, लेकिन उसमें एक है मुद्रा, उसमें ऐसे गरम गरम वो लगाया जाता है, इससे मुद्रा हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप सबको यमदूतों से कोई डर नहीं है, है ना? माता जी आपके यहाँ तो विष्णु दूत ही विष्णु दूत है, कोई चिंता नहीं है, भक्तों के लिए कोई चिंता नहीं। ये भी विचार अच्छा है, भक्त को कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं भक्त हूँ, भक्त को सोचना चाहिए मैं तो भक्त बनने की तैयारी में हूँ। अच्छा, आखिरी में नामाक्षर का और एक लाभ बताया गया है, पढ़िएगा पद्म पुराण में क्या कहा गया है।
पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है।
तो आप सबको जाना है ना कृष्ण लोक? ठीक है, अभी 23वां, पुष्प मालाएं स्वीकार करना। निर्माल्य धृति ही, भगवान के महाप्रसाद जो फूल माला आदि है इनको निर्माल्य कहते हैं। धृति ही मतलब स्वीकार करना, तो इस नियम को कहते हैं निर्माल्य धृति ही। अच्छा, अभी यहां एक गलती है किताब में, लेकिन वो किताब की गलती प्रभुपाद जी की गलती नहीं है। हुआ ये कि प्रभुपाद जी कैसे किताबों को लिखते थे आपको पता है? डिक्टाफोन में करते थे, बोलते थे, और अंग्रेजी तो उनकी मातृभाषा नहीं थी, इसीलिए बंगाली का एक्सेंट जो है काफी भारी हुआ करता था। और जब वो विदेश में गए, अमेरिकन जो ان کے شیشی تھے, ان کو بھارتی ایکسنٹ سے کوئی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ٹھیک سے, تو جیسے وہ ٹیپ سے سنتے اس حساب سے وہ ٹائپ کر لیتے. تو کبھی کبھی ایسے غلطیاں ٹائپ کرتے کرتے ہو جاتی, ان کو سمجھتا نہیں ٹھیک ہے, حالانکہ پربھوپا جی نے صحیح کہا لیکن ان کو سنائی ٹھیک سے نہیں دیا, انہوں نے سنا ایک سمجھا کچھ اور. جیسے ایک بار یہیں پہ آتا ہے, اسی کتاب میں آتا ہے, جب پتری لوک کی بات کرتے ہیں نا, پربھوپا جی کہتے ہیں پتری لوک, تو پتری لوک کے لیے انہوں نے انگریزی میں کیسے ٹرانسلیشن کر دیا پتا ہے, پٹ ٹری لوک, پٹ پٹ مطلب کھڈا, کھڈے میں جو پیڑ ہوتا ہے اس کا پلانٹس, اس کا پلانٹس آف دا ٹریز, تو اس کا انواد انہوں نے کیا کہ وکشوں کا لوک, پلانٹ آف دا ٹریز. سب نئے نئے بھکت تھے نا, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا, تو انہوں نے سوچا پتری وہ کیا جانے پتری کیا ہے, بےچارے نویوک نویوتی تھے وہاں. تو یہاں بھی آج کل کالج کے کسی ودیارتھی کو پوچھیں گے شاید پتا ہوگا, انہیں بول نہیں سکتے, تو وہاں وہ لوگ کیسے جانتے. تو پربھوپا جی نے جب کہا پتری لوک, ایسا بھی لوک ہے, تو انہوں نے کہا پلانٹس آف دا ٹریز, کہ وکشوں کے کوئی کا لوک ہے, کیونکہ پتری, تو انہوں نے سوچا یہ بھی ایک ٹری کا نام ہے, پتری, تو ٹری آف پلانٹ آف دا ٹریز ہو گیا. اسی پرکار سے یہاں بھی آپ آگے پڑھیے یہ شلوک, ایک ہی چھوٹا سا غلطی, ایک شبد کی غلطی ہے بس, لیکن مہتوپورن ہے. ہاں تو آگے پڑھیے, نرمالیہ دھرتی ہی.
اگلا نردیش یہ ہے کہ منشیہ کو اچا وگرہ کو ارپت کی گئی پشپ مالائیں پہننی چاہیے. اس سندربھ میں شریمد بھاگوت کے 11 سکند کے چھٹے ادھیائے کے 46 شلوک میں کرشن سے ادھو کہتے ہیں, اے کرشنا میں نے آپ کے دوارا پریوکت اور بھوگی گئی وستویں یتھا پھولوں کی مالائیں, سادھوؤں کے وستر, النکرن تتھا وستویں گرہن کر لی ہیں, اور میں آپ کے اچھشٹ بھوجن کو ہی کھاتا ہوں کیونکہ میں آپ کا تچھ داس ہوں. اس طرح مجھے وشواس ہے کہ بھوتک شکتی مایا کا جادو مجھ پر نہیں چل پائے گا.
اچھا تو یہ بھاو کیا ہے, ادھو کیا کہہ رہے ہیں؟ उद्धव कह रहे हैं आप के द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं उनको जब मैं स्वीकार करता हूं तो यह फल होता है कि मैं माया से सुरक्षित सदैव रहता हूं. तो अब ये बताइए, फूलों की मालाएं ये ठीक है, तो भगवान कृष्ण धारण किए हुए फूलों की मालाएं वो महाप्रसाद है निर्माल्य. अब ये साधुओं के वस्त्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण साधुओं के वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं क्या? साधुओं के वस्त्र कहां से आ गए? अब अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी से अनुवाद किया हुआ है ना, जो हिंदी की किताबें हैं ये पहले पूर्व अंग्रेजी में लिखी हुई थी किताबें, अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में किया हुआ है, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सेंटली आर्टिकल्स, SAINTLY, सेंट मतलब संत, सेंटली आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब वस्तुएं. तो सेंटली वास्तव में प्रभुपाद जी कहना चाहते थे सेंटेड आर्टिकल्स, क्योंकि संस्कृत शब्द रूप गोस्वामी के श्लोक में है गंध, गंध, तो गंध के लिए उन्होंने ट्रांसलेशन किया सेंटेड आर्टिकल्स, सुगंधित वस्तु. सेंटेड उन्होंने कहा लेकिन जो भक्त टाइपिंग कर रहे थे उस समय उन्होंने उसको सेंटली बना दिया, सेंटली आर्टिकल्स. तो यहां साधुओं के वस्त्र हो गए, है ना? आप समझ गए? तो इसको जरा आपके किताब में आप करेक्शन कर दीजिए. हाँ किया है ना, इसलिए कई भक्तों ने निंदा की कि आप लोग प्रभुपाद की किताबों को क्यों बदल रहे हैं. तो बेचारे बीबीटी के ट्रस्टीज बतला रहे हैं कि हम बदल नहीं रहे हैं, वाल से जो बदले हुए थे जो गलतियां थी वो सुधार रहे हैं. और फिर जो टेप्स में ऐसे बताए गए थे तो टेप सुनाते हैं कि देखिए प्रभुपाद जी ने कहा क्या और भक्तों ने लिखा क्या. बेचारे भक्तों की भी गलती नहीं है, उनका अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, और जल्दी 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 सब करना था तो जल्दबाजी में ऐसे हो गया.
तो
اس میں کریں گے شاید، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں. تو اس سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیے؟ جب ہم بھگوان کے مہا پرساد کو جیسے نرمالیہ آدی کو گرہن کرتے ہیں تو کیا لابھ ہوتا ہے بتائیے؟ ابھی ابھی آپ نے پڑھا نا، مایا سے بچے رہتے ہیں. اچھا، اور آگے پڑھیے. مرتیو کے سمے کیا ہوتا ہے؟
مرتیو کے سمے یمراج کے دوت اسے اپنے پاس نہیں بلاتے. یعنی میں سارے وشنو نیموں کا پالن نہیں بھی کرتا، کنتو یعنی میں کرشن کے ساتھ گرہن کرتا ہے تو ایک دم سے وشنو پد کو پراپت کرنے کا پاتر بن جائے گا.
تو ایسے نرمالیہ دھارن کرنے سے بھی ہم یمدوتوں کے چنگل سے مکت ہو جاتے ہیں، ارتھات یمدوت آئیں گے ہی نہیں ہمارے پاس میں. اور ادھارن شری پربھوپاد دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم انی سارے جو ویشنو سدھانت ہیں بھلے ان کو سویکار نہ بھی کریں، کیول کرشن پرساد سویکار کرنے ماتر سے ہم ویشنو بن سکتے ہیں. کئی بار بھکت پریشانی میں رہتے ہیں، چنتت رہتے ہیں کہ ہاں ہمارے کوئی نکٹ کے کوئی دوست ہیں، کوئی متر ہیں، کوئی پتی ہیں، پتنی ہیں، کوئی بچے ہیں، ماتا پتا ہیں، وہ بھکت نہیں بن رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پربھوپاد جی یہاں پہ سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں، ان کو خوب پرساد کھلائیے، کرشن پرساد کھلاتے جائیے. کرشن پرساد کھلا کھاتے کھاتے کیا ہوگا؟ ہردے کا پریورتن ہوتا جائے گا. اچھا، آگے اور ایک لابھ بتایا ہوا ہے نرمالیہ بھرتی ہی کا، پڑھیے گا سکند پران میں کیا کہا گیا ہے.
ہے نارد، جو ویکتی کرشن کو ارپت پھولوں کی مالا کو اپنے گلے میں دھارن کرتا ہے تو سمست روگوں تتھا پاپ کرموں کے پھلوں سے مکت ہو جاتا ہے اور پدارتھ کے کلمش سے کرمشہ چھوٹ جاتا ہے.
نہ کیول پاپوں کے پھل سے، روگ جو بھی روگ وہ بھی چلے جاتے ہیں، بھوتک اور آدھیاتمک دونوں لابھ ہو جاتے ہیں. چرنامرت پینے سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے ایک ماتا جی کو جانتے ہیں جن کو کوئی ایسے روگ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ کو بچہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اور بہت ہی کوئی آپریشن کرنا پڑا اور پران خطرے میں تھی ان کی، اور بس بچ گئی، کسی نے کسی طرح سے بھگوان کی کرپا سے بچ گئی، وہ جیوت رہی. اور ڈاکٹر نے کہا کہ آئندہ یہ کبھی سمبھو نہیں ہوگا، پتر بچہ آپ کو نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے تو ایسے بالکل ٹھیک ٹھاک کہہ دیا تھا، لیکن یہ ماتا جی کو بہت وشواس تھا چرنامرت میں، تو روز جا کے مندر میں چرنامرت لیتی تھی، گھر میں لاتی تھی، اگر وہ خود نہیں جا پائے تو کسی کے دوارا لاتی تھی، اور روز پینے لگی. اور دو سال بعد ان کو ہوا بچہ، جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٟٹر کو وشواس نہیں ہوا، تو بولنے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا، ہم تو کاغذ آپ کے کچھ کہتے ہیں لیکن جو پرتیکش ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وشنو پادودکم پیتوا، بتائیے کیا ہے؟ پنرجنن، اکال مرتیو ہرنم سرو روگ وناش سرو ویادھی وناشنم وشنو پادودکم پیتوا شرسا دھاریامیہم. ہرنم، اکال مرتیو ہرنم سرو ویادھی وناشنم، وشنور پادودکم پیتوا، ادک ادک مطلب जल उदकम पादोदकम विष्णोर पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामि अहम्। शिरसा मतलब सिर के ऊपर, धारयामि मैं धारण करता हूं, अहम् चरणामृत तो बाद में आएगा और चर्चा करेंगे, और भक्ति के लिए जो लाभ होता है उसका भी वर्णन हम करेंगे उस समय जाके, उसके लिए भी श्लोक है वो बाद में देखेंगे। प्रभुपाद जी ने तो अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से चालू किया ना, इस्कॉन के बुलेट बुलेट थे वो, गुलाब जामुन ऐसे बॉटल में रखा करते थे और जो भी लोग आते थे वहां वो जितना चाहे उतना गुलाब जामुन उठाकर खाने शुरू करते, उनको क्या पता कि प्रसाद क्या है, और उनको अच्छा लगा, स्वादिष्ट है, मीठा था, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अभी जब निर्माल्य के बारे में पढ़ा है तो आप ले लीजिए, अच्छी बात। अभी और 24वां अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। रूप गोस्वामी कहते हैं तस्याग्रे तांडवम। तस्य तस्य मतलब उनके, अग्रे मतलब सामने आगे, अग्रे तस्याग्रे तस्याग्रे या केवल अग्रे तांडवम। तांडव मतलब नृत्य, अच्छा द्वारका महात्म्य में क्या क्या बताया गया है भगवान के सामने नृत्य करने का लाभ क्या है।
द्वारका महात्म्य में अच्छा विग्रह के समक्ष नाचने के महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण का इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है।
ठीक, एक मिनट, हाँ इसका इसकी चर्चा करते हैं। तो पहली बात क्या है, क्या लाभ बताया है, यह जो भक्ति भाव से नृत्य करता है भगवान के विग्रह के सामने तो क्या हो जाता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, हजारों वर्षों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में रूप गोस्वामी के श्लोक में लिखा हुआ है मनमंत्र शतेषु, केवल हजारों वर्षों के नहीं, सौ मनमंत्र, एक मनमंत्र मतलब दो मनु के बीच में जो अंतर है, एक मनमंत्र में कितने चतुर्युग होते हैं, नहीं 14 मनमंत्र एक दिवस में होते हैं ब्रह्मा जी के, 71 चतुर्युग होते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ चुके हैं ना, है ना, तो उसमें ये सब आता है ना, कलयुग में ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी है, ब्रह्मा जी का दिवस कितना है, तो आप सोच सकते हैं कि मनमंत्र कितना लंबा है, और ऐसे सौ जो सैकड़ों जो ऐसे मनमंत्र हैं, शतेषु, शत मतलब सौ, सौ मनमंत्र मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए जितने पिछले जन्मों में, कितने जन्मों में, जो सौ मनमंत्र में हमें जितने भी जन्म लिए हैं और जितने पाप इकट्ठे किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, क्या करने से, भाव विभोर होकर विग्रह के सामने नृत्य करने से। अब कहा तो गया है, इसका मतलब है कि ये एक ऊंचे स्तर की बात हो रही है कि जो वास्तव में भक्ति करने से जो स्वाभाविक रूप से जो लक्षण प्रकट होते हैं उनके बारे में वर्णन है। वो आगे चल के भाव भक्ति के स्तर में आएंगे। अष्ट सात्विक विकार कहते हैं उसको। ये भगवान के सामने नृत्य करने की जो प्रथा है ना, ये सब जगह आप पाएंगे, केवल दक्षिण में नहीं। आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे, जब ये क्या वारकरी कहते हैं उनको, जो वो लोग पंढरपुर जाते हैं तो उनके संकीर्तन आप देखिए, वो लोग भी नृत्य करते हैं। लेकिन हमारे जैसे उनको नृत्य नहीं होता, वो लोग बड़े सिस्टम से करते हैं, सब एक साथ में कुछ करते हैं। हम एक बार गए थे तो देखे, सब एक साथ गोल बैठते हैं, फिर सभी एक साथ ऐसे करेंगे, सब आगे आएंगे ऐसे। और जगन्नाथपुरी में भी देवदासियों की परंपरा है, यहाँ उत्तर भारत में भी तो है ही, तो सब जगह है, ये प्रथा तो है। अच्छा, और आगे पढ़िए फिर। नारद जी द्वारका महात्म्य में क्या कहते हैं और कुछ कह रहे हैं?
उसी ग्रंथ में नारद जी का कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चय विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं।
पढ़िए और आगे।
जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार एक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं।
बहुत सुंदर बात है ना। तो पाप पक्षियों के समान है। एक वृक्ष के नीचे जाइए, जोर से ताली बजाइए, क्या होगा? पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से संकीर्तन में हम उत्साह से जब ताली बजाते हैं या नृत्य करते हैं, तो वो पाप रूपी या पक्षी रूपी पाप जो हमारे हृदय में है, वो सब खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। से भी होता है। अच्छा, करताल, करताल शब्द का विश्लेषण कीजिए। कर, कर मतलब हाथ, ताल तो मजाते हैं ना, एक दो तीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा, इसको याद रखेंगे हम। हमें नहीं, हमने ये सुना नहीं था। बात एक ही है, इसलिए कोई बंधन नहीं है। अगर हमें कीर्तन करना, अरे मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, हाथ तो है ना, चलिए हाथ से बजा के हम कर सकते हैं, महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। लोग ये हाथ की जो रेखाएं हैं, इनसे बड़े चिंतित होते हैं, है ना। हमारे मंदिर के बाहर, एमबीटी के बाहर भी एक व्यक्ति बैठते हैं, सारे सब खोल के अपना सर। कई बार भक्त लोग भी जाते हैं, हाथ पाथ दिखाते हैं। कई बार हमारे जब हम ट्रेन में उनमें जाते हैं, तो लोग भक्त और ज्योतिष के बीच में अंतर समझते नहीं, तो हमारे पास आते हैं, पंडित जी अब हाथ देखते हो क्या? तो उनको समझाना पड़ता है, उस तरह के हम नहीं है। और वे एक भक्त बता रहे थे, कभी एक बार उनको गुस्सा आया तो उन्होंने कुछ कह दिया, ऐसा है मृत्यु निश्चित है, तो वो तो डर ही गए। तो बताया मृत्यु, तो फिर उन्होंने समझाया, नहीं नहीं मृत्यु सबके लिए निश्चित है, ऐसी हम जनरल बात कह रहे हैं, तो है ही ना मृत्यु सबके लिए निश्चित, तो झूठ तो नहीं बोला हमने। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन में ताली बजाने से ये सारे हाथ, ये रेखाएं जो है वो बदल जाती है। اس کے لیے کوئی چنتا نہیں. اچھا آگے ارچ وگرہ کے سمان میں نتمستک ہونا, اس کو کہتے ہیں دنڈون نتیہ, دنڈون نتیہ. یہ دنڈوت کا شبد کا مطلب کیا ہے؟ دنڈوت دنڈے کی طرح ہے ہونا, کیسے گرنا؟ ایسے. جب ڈنڈا گرتا ہے ایسے تو ایسے ایسے ہو کر نہیں گرتا نا, کیسے گرتا ہے؟ ٹیڑھا تو نہیں ہوتا, ڈنڈا سیدھا آ جاتا ہے. ہاں پڑھیے.
ناردیہ پران میں ارچا وغیرہ کے سمکش نتمستک ہونے اور نمسکار کرنے کے وشے میں ایک کتھن ملتا ہے, جس میں کہا گیا ہے جس ویکتی نے مہان یگیہ انوشٹھان کیا ہے اور جس ویکتی نے بھگوان کے سمکش نتمستک ہو کر کیول نمسکار کیا ہے انہیں ایک سمان نہیں مانا جا سکتا. جس ویکتی نے انیک مہان یگیہ کیا.
ایک منٹ. ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک اور ہے, جیسے اشوامیدھ یگیا آدی بڑے بڑے یگیا ہوتے ہیں کرم کانڈ میں, اور ان سے بہت کچھ لابھ پراپت ہو سکتا ہے. کیا لابھ پراپت ہو سکتا ہے؟ پنیہ, بہت ہی پنیہ کی پونجی بڑھتی ہے ایسا کرنے سے. دوسری اور بھگوان شری کرشن کے سامنے ایک دنڈوت نمسکار, تو دونوں کی تلنا کی جا رہی ہے. اور کیا تلنا ہے, کیا نشکرش ہے؟ کہ واسطے میں تلنا نہیں کی جا سکتی. کہ اتنا انتر ہے دونوں میں کہ تلنا نہیں کی جا سکتی. کہ ہزاروں ہزاروں اشومیدھ یگیہ ایسے کوئی وشال یگیہ سمپن کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ لابھ پراپت نہیں ہوگا جو کہ بھگوان شری کرشن کے سامنے ایک دنڈوت نمسکار کر کے ہمیں پراپت ہوگا. اور اس کے پیچھے کیا لوجک ہے, کیا سدھانت ہے اس کے پیچھے, کیوں ایسا ہے؟ جو یگیہ کے پھل ہیں وہ پنیہ ہے, اور پنیہ کا پھل اشاشوت ہے. اور دوسری اور اس کے وپریت جو بھگوان کو نمسکار کرنے کا لابھ ہے وہ ادھیاتمک ہے, شاشوت ہے. من منا بھو مد بھکتو مد یاجی مام نمسکرو, کہ مجھے نمسکار کرنا. تو بھگوان کہتے ہیں اس انگ کا ورنن بھی بھگوان نے کیا ہوا ہے بھگوت گیتا میں, تو اس لیے ان دونوں کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے. شڈ گوسوامی کے بارے میں بتایا جاتا ہے سنکھیا پوروک نام گان نتی بھی, اس کا کیا مطلب ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی لوگ سوچتے ہیں برنداون میں رہ کے ہمیں سادھنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شڈ گوسوامی جو کہ نتیہ سدھ ہیں وہ بھی اپنے نیمت روپ سے سادھن بھجن کرتے تھے. سنکھیا پوروک نام گان نتی بھی, بڑے اپنے سنیم سے کرتے تھے. اور ایسے بتایا جاتا ہے رگھوناتھ داس گوسوامی سناتن گوسوامی آدی, وہ روز ان کا نیم ہوتا تھا کہ کم سے کم اتنی سنکھیا میں ہمیں دنڈوت کرنے چاہیے بھگوان کو, بھکتوں کو. کبھی کبھی ہزار دنڈوت, کبھی زیادہ بھی دنڈوت روز لگاتے تھے. شریر کو کشٹ ہوتا ہے نا, بار بار جھکنا پڑتا ہے, بار بار دنڈوت کرنا, پھر اٹھنا, تو وہ لگاتے تھے سنکھیا پوروک. تو ایسے شڈ گوسوامی نے سکھلایا ہے کہ کیسے دنڈوت وغیرہ کرنا چاہیے. کئی ایسے بھکت ہیں بابا جی وغیرہ ہیں جو دنڈوت پریکرما کرتے ہیں گووردھن کی, اور کیول بابا جی نہیں, ہم نے کئی مہیلاؤں کو بھی دیکھا ہے کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ تو پورا دنڈوت, اور کئی ہیں جو 108 دنڈوت پریکرما کرتے ہیں, مطلب ایک ہی جگہ 108 دنڈوت کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ سمے پرچار میں جانا چاہیے. جس سمے میں ہم 108 پریکرما ادھر ایک ستھان میں کریں گے, اس سے بجائے ہم اور پستک وترن کریں اور اپنا جپ کر کے اور ہم اس آندولن کو اور پھیلائیں. یہ ہمارا بھاو ہے. परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सामने नमस्कार करना, दंडवत करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर, इनका नाम सुना है आपने। वो इतने शक्तिशाली थे आध्यात्मिक दृष्टि से कि जब वो नमस्कार करते थे किसी शालिग्राम शिला को, तो अगर वो शालिग्राम शिला सच्ची शालिग्राम शिला नहीं होती तो वो फूट जाती। अभी जो साधारण भक्त होते उनको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये सच्चा है या नहीं है। कोई आके बताएगा ये गंदकी नदी से हमने लाए हैं आपकी लिखास करके, ये शालिग्राम शिला है। जब तक हम बिल्कुल निपुण न हो इस बारे में, हम पहचान नहीं पाएंगे कि वास्तव में शालिग्राम शिला है या नहीं। तो अभिराम ठाकुर जब दंडवत करते थे तो शालिग्राम नकली अगर होती तो टूट जाती, और भक्त लोग उनका नमस्कार, उनका दंडवत स्वीकार करने के लिए बहुत घबराते थे। अगर किसी को दंडवत कर लिया जो अवैष्णव है तो वो मर जाता था आदमी। तो फिर एक बार एक लड़का था, इसका नाम था गोपाल गुरु, गोपाल, वास्तव में उसका नाम था गोपाल, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे गुरु कह दिया। क्यों? क्योंकि एक बार एक व्यक्ति अपने जिह्वा पकड़ के शौचालय में जा रहा था, ऐसे जोर से पकड़ा हुआ था। तो बालक गोपाल ने पूछा, ए आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला, मैं क्या करूं कि मेरे मुख से कृष्ण का नाम निरंतर निकलता है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। मैं सोच रहा हूं मैं शौचालय में जाऊंगा तो अपवित्र स्थान में शुद्ध भगवान का नाम लूंगा तो मेरे से अपराध होगा, ठीक नहीं होगा। तो छोटे बालक गोपाल ने कहा, अरे आपको पता नहीं है क्या, भगवान के नाम लेने में कोई शुद्ध अशुद्ध स्थान का कोई विचार नहीं होता, इसलिए आपको बेशक लेना चाहिए भगवान का नाम, अंदर भी लेना है बाहर भी लेना है। अगर आपकी मृत्यु अंदर हो जाएगी तो क्या होगा, मृत्यु के समय तो भगवान का नाम लेना चाहिए हमें, तो मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई रुकाव नहीं है, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना ये बात तो बहुत प्रसन्न हुए, तो बोले ये तो हमारे गुरु हैं, इसलिए उन्होंने नाम उनको गुरु दे दिया। उस दिन के बाद उनका नाम हो गया गोपाल गुरु, और आगे चल के वो गोपाल गुरु गोस्वामी हुए। शायद वक्रेश्वर पंडित जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि गोपाल गुरु के बारे में सब जगह बात फैल गई कि इतना छोटा लड़का है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको गुरु ऐसे कह के पुकारा है। तो अभिराम ठाकुर ने सोचा, मैं आ रहा हूं गोपाल गुरु को देखने के लिए, ये कैसे हैं, वैष्णव देखते हैं सच्चे है या नहीं है, मैं आता हूं। ऐसे ही बस उन्होंने कहा, वो तो गोपाल का दर्शन करना चाहते थे। सारे भक्त घबरा गए, तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, वो अगर बाल ये हमारे गोपाल को दंडवत करें, कुछ हो गया इसको तो क्या होगा। तो गोपाल भी थोड़ा घबरा गया, छोटा बच्चा था ना। तो जब अभिराम ठाकुर आए तो चैतन्य महाप्रभु की गोदी में वो भाग के बैठ गए बालक गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में बैठे तो क्या डर है अभी। तो अभिराम ठाकुर ने आके दंडवत किया, फिर कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी नहीं होता क्योंकि गोपाल तो शुद्ध भक्त थे। तो खैर, ऐसे दंडवत वगैरह करने की विधि जो है ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ अच्छा, आगे भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना, इसके लिए कहते हैं अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम, अच्छा पढ़िएगा, ब्रह्मांड पुराण में क्या कहा हुआ है।
ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा होता है, हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है।
देखिए भगवान ने, भगवान कितने कृपालु हैं, देखिए اتنا سا بھی کرنے سے وہ اتنا لابھ پردان کرتے ہیں. یہ سب نیم کس نے بنائے ہیں کہ ایسا کھڑے رہنے سے آپ کو اتنا لابھ ملے گا, اتنے پاپ نشٹ ہو جائیں گے, یہ سسٹم تو بھگوان نے ہی بنائے ہیں نا, انہی کے بنائے ہوئے نیم ہیں. تو بھگوان اتنے کرپالو ہیں کہ کل اس بھوتک جگت کے بد جیووں کے لیے, ان کے ادھار کے لیے انہوں نے اتنے سارے طریقے دیے ہیں, کیول ہمیں سویکار کرنا ہے. اتنا سلبھ ہے یہ مارگ, بھکتی مارگ ایسا ہے. بھاگوت میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک ایسا بھکتی مارگ راج مارگ ہے جس پہ کوئی ویکتی آنکھ بند کر کے بھی بھاگے تو وہ گرے گا نہیں, پھسل کے وہ چلتا رہے گا, اپنی گتی کو پراپت کر لے گا. تو دیکھیے کتنا لابھ ہے, کیول رتھ یاترا چل رہی ہے, ویکتی کوئی کھڑا ہو گیا سمان دینے کے لیے بھگوان کو, ایسا کرنے سے کیا ہوگا, اتنے سارے پاپ نشٹ ہو جائیں گے, وشنو لوک جانے کے لیے یوگیا ہو جائے گا, ارتھات اس کی سکرتی بڑھ جاتی ہے, پھر وہ جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار کھڑا ہو گیا تو چلا گیا, ایسے نہیں. ٹھیک ہے آگے, وشنو مندر یا تیرتھ ستھانوں کی یاترا. اچھا, ارچا وگرہ کی پیچھے پیچھے چلنا, تو انوورج, اس کو انوورج کہتے ہیں. ورج مطلب جانا اور انو مطلب پیچھے پیچھے. تو بھوشیہ پران میں کیا کہا گیا ہے پڑھیے گا. دیکھیے کتنے فائدے ہیں, کتنے طریقے بھگوان نے بتائے, آشچرجنک ہے یہ وستو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ جانتے ہوئے بھی ایسے کتنے لوگوں کو لابھ ہوتا ہوگا. یہی تو ہے اجنات سکرتی جس کی چرچا ہم کر چکے ہیں. اچھا آگے 28واں, اس کو کہتے ہیں ستھانے گتی ہی. گتی ہی مطلب جانا یا اپنا ادیش بنانا, گنتویہ بنانا. تو ایسے بتایا جاتا ہے کہ ستھان کے دو ارتھ ہو سکتے ہیں, یا تو بھگوان وشنو یا کرشن کا مندر, اور دوسرا ایک تیرتھ ستھان یا دھام. اب دونوں کے بارے میں وہ چرچا کریں گے. تو پہلے دو ادھارن دیے, ایک تو پرانوں کا پرمان دیا ہے اور دوسرا پرمان ہے ہری بھکتی سودھودایا کا. تو پہلا جو پرمان ہے وہ تیرتھ ستھان کے بارے میں ہے, اور دوسرا ہے بھگوان کے مندر میں جانے کا لابھ. ٹھیک ہے, تو پرانوں میں کیا بتایا گیا ہے تیرتھ ستھانوں میں جانے کے بارے میں.
جو ویکتی ورنداون متھرا یا دوارکا جیسے تیرتھ ستھانوں میں جانے کا پریاس کرتے ہیں وہ واسطو میں بھنگے ہیں. ایسے یاترا کاریوں سے وہ بھوروپی مرستھل کو پار کر جاتے ہیں.
تو بھوتک جگت یا بھوتک سرشٹی کی تلنا ایک ریگستان سے کی گئی ہے, مرو بھومی, جس کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. پرنتو جو ویکتی ایسے ورنداون متھرا دوارکا جیسے تیرتھ ستھانوں میں جاتے ہیں صحیح بھاونا سے, بھکتی بھاو سے, تو ان کو وہ پاترتا یا کشمتا پراپت ہو جاتی ہے جس سے کہ وہ اس ریگستان کو پار کر سکیں. آگے بھگوان کرشن کے مندروں میں جانے کے لیے کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے ہری بھکتی سودھودے میں.
جنم کے سمے ماتا کے گھر میں رہنے کے کشٹ کو بھول جاتا ہے,
किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है।
गर्भ रूपी बंदी ग्रह यह ही ऐसा जो बच्चा मां के गर्भ में होता है, ये कोई आराम की अवस्था होती है या नहीं? बहुत कष्ट होता है बच्चे को भी होता है और मां को भी होता है। तो ऐसे परिस्थिति से अगर हमें बचना है ताकि पुनः हमें ऐसे मां के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़े, तो फिर हमें भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन लाभ ये अभी वैकुंठ की दृष्टि से, आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से कहा गया है। तो विष्णु कृष्ण एक ही बात एक ही है जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, आपका काम हो जाएगा, आप प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा। अब प्रधानमंत्री से आप उनके घर में जाके मिलेंगे या उनके दफ्तर में जाके मिलेंगे, वो दूसरी बात है। मूल बात क्या है? प्रधानमंत्री से मिलना। उसी बारे में हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, चाहे वो वैकुंठ लोक में हो या गोलोक वृंदावन में हो, बात की बात है ना। तो चाहे वो कृष्ण हो या नारायण हो, विष्णु हो, भौतिक सृष्टि के दृष्टिकोण से तो एक ही है, बात एक ही है कि हमें वहां जाना है। हम बंबई से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद हम दोनों ट्रेन के बैठे हैं, आप चले गए ताजमहल होटल में रहने के लिए और हम चले गए धर्मशाला में रहने के लिए, लेकिन वो बाद की बात। जब हम बंबई में बैठे हैं, एक दूसरे से पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से इस समय हमारा उद्देश्य क्या है? भौतिक सृष्टि से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना। तो कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति बात एक ही है इस दृष्टि से। हाँ, रस का अंतर है इसमें, परंतु वो विषय यहां नहीं है। ठीक है।
जैसे हम जब तुलसी कोई
कहता विष्णु भक्ति, कोई कहते कृष्ण भक्ति। वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वास्तव में शास्त्र में विष्णु भक्ति है, इसलिए हमें विष्णु भक्ति कहना चाहिए। हालांकि कई भक्त कृष्ण भक्ति कहते हैं, वो गलत तो नहीं है, निश्चित ही गलत नहीं है, परंतु जो शास्त्र में है उसे हमें बदलना नहीं चाहिए। जैसे भक्त को क्या कहते हैं? वैष्णव। वैष्णव मतलब कौन है? तो कृष्ण का भक्त क्यों नहीं? तो हमें कार्ष्णी, हम अपने आप को कार्ष्णी क्यों नहीं कहते है? कहते हैं, है ना। कृष्ण के भक्त तो कार्ष्णी होते हैं, विष्णु के भक्त वैष्णव, कृष्ण के भक्त कार्ष्णी होते हैं। हम कहते, हम नहीं कहते मैं कार्ष्णी हूं, हम कहते हैं मैं वैष्णव हूं। या अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कहते हैं ना। तो वैष्णव में सब आ गए, कृष्ण भक्त आ गए, विष्णु भक्त आ गए, सब आ गए। इसलिए श्लोक है शास्त्र में, जो श्लोक है उसे बदलना नहीं चाहिए, यही बात है। इसलिए विष्णु भक्ति ही ठीक है। हाँ, परंतु श्लोक है, क्योंकि सब जगह एक सिस्टम प्रथा बन गई ना इस्कॉन में, इसलिए जिन्होंने पुस्तक छापा उन्होंने भी कृष्ण भक्ति लिख दिया, परंतु श्लोक है वैसे विष्णु भक्ति। क्योंकि ये गलत तो नहीं है, तो सही ना, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी वो तो है, परंतु जो श्लोक है उसको ویسے ہی رکھنا چاہیے, وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اب سمے ہو گیا. ویسے تو اس میں اتنے سب چرچا کرنے کی چیزیں ہیں, لیکن سمے کی کمی ہے نا, یہی ایک سمسیا ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 18 تاریخ تک ہو یا نہ ہو ہمیں پتا نہیں, تو شاید ایک یا دو پروچن شاید بعد میں ہو جائیں, لیکن آپ جا رہے ہیں نا, جے تیرتھ پہ جا رہے ہیں نا, وہ ایک دو اس کے بارے میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو انیوں کو انیہ بھکت جو ہیں آپ سب آ پائیں گے, لیکن 18 نہیں, 19 کو ہم جا رہے ہیں اور 24-25 کو آ رہے ہیں, تاکہ باقی جو ہے اس کی تیاری آپ جاری رکھ سکتے ہیں. ہے نا, 31 کو ہے نا پریکشا آپ کی, ہے نا پریکشا 31 کو, 2 تاریخ کو ہے. ٹھیک ہے, تو کیول ایک دو پروچن اور جاتے ہو جائے, کلاس ہو جائیں گے نا, تو پھر ہم کر پائیں گے کور اس کو. منظور ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, کوئی سمسیا تو نہیں. ہم نے سوچا کہ چاہے ہم بالکل جلدی 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 کر کے کریں, پھر اس میں آنند نہیں آئے گا, پھر بس وہ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں, ویسے ہو جائے گا. تھوڑا کچھ تو وستار میں کرنا چاہیے نا ہر ایک, پھر اس میں تھوڑا آنند آتا ہے اور رس بھی آتا ہے, سمجھ میں بھی اچھی طرح سے آ جاتی ہے بات. شریل پربھوپاد کی جائے, شری بھکتی رسامرت سندھو کی جائے, شریل روپ گوسوامی پاد کی جائے, گوڑ پیمانندے.